चले देखते हैं आज की आयतें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अगली आयत बहुत अहम आयत है, इसलिए कि आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताएं आप कैसे कह सकती हैं कि अल्लाह ही इबादत के लायक है और कोई इबादत के लायक नहीं, बड़ा आप दावा करती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, व्हाट इज द आंसर? अब क्या जवाब देंगी बताएं? आपके पास क्या दलील है? नहीं जी, आपको दलील देना, ऐसे तो कहने की बातें क्या होती हैं, नहीं जी अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आप कहां से दलील दे सकती हैं? कोई है आपके पास दलील? तब आप क्या कहती हैं कि हाँ अल्लाह ताला ने क्या दलाइल दिए हैं? याद रखिए इन बातों को, कभी आपको कोई पूछ सकता है? आपके बच्चे ही आपको पूछ सकते हैं, कल को कोई क्वेश्चन करे आपका बच्चा, आप क्या कहेंगी आगे से? आप कैसे कह सकती हैं कि आप ही सच कह रही हैं? आप क्या आपके पास दलील है इसकी? आपका ही दीन सच्चा है, एक अल्लाह को आप मानते हैं, वो ये सच्चाई की बात है कि अल्लाह ताला ने जो अहदे अलस्त हमसे लिया था ना, कि अल्लाह ताला ने हमसे पूछा था जब हम एक रूहें थे कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो हमने सब ने इकरार किया था। अब हम कहेंगे बोलो हमें कौन सा वो याद है इकरार करना? तो आपको ये याद है कि आप मां के पेट में 9 महीने रहे थे? नहीं याद ना, तो आप यकीन करते हैं? क्यों यकीन करते हैं? आपको बताया गया कि आप रहे थे, आप जानते हैं आप रहे थे, हालांकि आपने देखा नहीं, आपको याद भी नहीं है। इसी तरह हमें किसने याद दहानी कराई है? अंबिया ने, किताबों में अल्लाह ताला ने उतारा, ठीक है। दूसरी, अल्लाह ताला ने कायनात में निशानियां रख दी जो कि हमें बताती हैं कि एक अल्लाह है जो इनका पैदा करने वाला है, वरना एक से ज्यादा रब होते एक ना होता। सबसे पहले तो वहदानियत के ऊपर आओ ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इस कायनात में एक से ज्यादा इलाह होते ला फसदता, इसमें फसाद पैदा हो जाता। अगर आसमान और जमीन में कोई और भी इलाह होता तो एक ने कहना था ये करो, दूसरे ने कहना था ये करो, एक ने कहना था मेरी इबादत होनी चाहिए, दूसरे ने कहना था नहीं मेरी होनी चाहिए, दोनों की आपस में ठन जाती तो ये कितना फसाद होता। ये जो आप देख रहे हैं आसमानों के निजाम कितने हारमनी से चल रहा है, कितना सुकून है ऊपर, ये हो सकता था क्या? तो अच्छा, अब और क्या इसके दलाइल है? और अल्लाह ने कुरान में इसकी दलील दी है क्या, कि अल्लाह ताला खुद गवाही देता है कि उसके सिवा इस कायनात में कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह से बड़ी सच्ची गवाही किसी की नहीं हो सकती। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह गवाही देता है। और शाहिदा के माना ये ही नहीं, सिर्फ शाहिदा का माना एक माना है गवाही देना, अल्लाह गवाही देता है। नंबर टू, शाहिदा बमाना हकमा, अल्लाह ताला का ये हुक्म है, सिर्फ उसने गवाही नहीं दी, अल्लाह का ये हुक्म है कि उसके अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं। झूठे तो लोग माबूद बनेंगे ही, झूठे माबूदा ने बातिल तो होंगे ही, लेकिन बरहक रब, बरहक माबूद, माबूद कौन होता है, इलाह कौन होता है? जिसकी इबादत की जाए, जो इबादत के लायक हो, जिसकी पूजा की जाए, वो सिर्फ अल्लाह है। फिर नंबर थ्री, शाहिदा का मतलब क्या है? यकीनी बात की खबर देना, इत्तला देना, यकीनी बात हो, जो कंफर्म बात हो, अल्लाह ताला वो कंफर्मेशन दे रहा है। फिर नंबर फोर, शाहिदा का माना यहां पे है वाजे कर देना, बयान कर देना, जो वाकई जो कंफर्म बात है उसको बयान कर देना। और अल्लाह ने बयान भी कर दी, कैसे बयान की? रसूलों के जरिए, जमीन में निशानियां रख के, फितरत में इंसान के रख के, रसूल भेज के अल्लाह ने बयान कर दी। तो शाहिदा के ये सब माने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा फीदा बढ़ा दिया। अब अल्लाह ताला ने खुद बयान किया, खुद हुक्म दिया, खुद गवाही दी, खुद इतला दी है, उससे ज्यादा तो किसी का इल्म नहीं है ना, कि कोई इलाह है ही नहीं, इल्ला हुआ, मगर वो ही इलाह है। और क्यों ये गवाही देता है? वल मलाइका, तो और मलाइका भी गवाही देते हैं, फरिश्ते भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। वह उलुल इल्म, और इल्म वाले भी गवाही देते हैं। या पे बहुत बड़ी फजीलत हमें पता चल रही है इल्म वालों की, क्योंकि इल्म वाला उसकी शहादत को अल्लाह ने अपनी शहादत और मलाइका की शहादत के साथ रखा है। कि जो इल्म वाले होते हैं ना, वो पहले भी हमने रासिखूना फिल इल्म की बात पढ़ी थी ना, कि रासिखूना फिल इल्म क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, सब चीज हमारे रब की तरफ से। इल्म आने के बाद इंसान में कितनी बड़ी तब्दीली आती है, वो बेइल्म की तरह नहीं होता, फिर भी जाहिलों की तरह नहीं होता। देखो इल्म आने के बाद जब जितना इंसान इल्म लेता रहता है उसको पता चलता है, इवन ये सिर्फ इल्म ठीक है, यहाँ पे तो दीन के इल्म की बात है, लेकिन इवन वो लोग जो वाकई हर तासुब से पाक होके इल्म लेते हैं ना, सितारों का, सैयारों का, सूरज चांद दिन का, वो भी कहते हैं कि कोई एक ही जात है जो इसको चलाने वाली। मैंने खुद साइंटिस्ट की स्टेटमेंट्स पढ़ी, ठीक है, वो इस्लाम नहीं लेकर आए, लेकिन वो ये मानते हैं, वो ये गवाही देते हैं कि हमने जितनी अभी तक ये स्टडी की है उसके बाद है कि कोई इसका चलाने वाला है जो बियॉन्ड दिस है, इससे बाहिर है, वो इसका हिस्सा नहीं है, इस टाइम का, इस स्पेस का हिस्सा नहीं है, वो इससे बाहिर है कहीं, ये खुद साइंटिस्ट कहते हैं। यानी इतना इल्म उन्होंने लिया, फिर उनको ये पता चला कि वाकई, इसीलिए आप कायनात की निशानियों में भी गौर और फिक्र करें तो आप तौहीद को पहुंच जाते हैं और आप गवाही दे सकते हैं कि एक है कोई जो इसको चलाने वाला है। तो इल्म की बड़ी फजीलत है, इल्म इसलिए आप इल्म हासिल करें, ये दर्जों की बुलंदी का सबब बनता है। देख लें कहां तक इल्म वालों के दर्जे पहुंच गए, माल के लिए जैसे हम हिर्स करते हैं ना कि माल मेरा और बढ़ जाए, इल्म के लिए शौक बढ़ाएं, इल्म सिर्फ इसलिए ना लें कि हाँ बस मैंने ये कोर्स करना है, ये कोर्स मुकम्मल हो जाए मेरा, मेरी सर्टिफिकेट बस मिल जाए, चलो सर्टिफिकेट ना भी बस कोर्स हो जाए, बस मैंने पढ़ लिया ना बस ठीक है, नहीं, इल्म वाले बनने की ख्वाहिश करें। कितनी आपको अहादीस बताई हैं इल्म हासिल करने वाले के लिए, कैसे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, अल्लाह अकबर, इससे बड़ा क्या ऑनर हो सकता है कि फरिश्ते पर बिछाए, इनको इतना प्रोटोकॉल दें, वो इतना इनकी ताजीम करें। इल्म हासिल करने वाले के लिए देखिए आसमानों जमीन की तमाम चीजें, हत्ता के समंदर की मछलियां भी आलिम की मगफिरत की दुआ करती, और आलिम कैसे बन सकते हैं, आलिम ऐसे नहीं बनते, आलिम कोई वो नहीं नाम होता कि आपने कोई आलिम का कोर्स कर लिया तो आप आलिम बन गए, इल्म लेना, और इल्म जो लेना होता है ये इस तरह के कामों से नहीं होता कि बस आए क्लास खत्म की उसके बाद पता ही नहीं अगले जुमे तक बस सोए पड़े हैं, उसके बाद नहीं कोई जागेंगे अगर उस दिन ही कुरान खोलना है, नहीं, शौक है आपके अंदर तलबे इल्म का, मैं इल्म वाली बन जाऊं, मेरे लिए समंदरों की मछलियां मेरे लिए भी दुआएं करें, मेरे लिए भी फरिश्ते पर बिछाएं। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर चलाता है। एक और हदीस में आता है चींटियां भी अपने सुराख में इनके लिए दुआएं करती हैं। अब आप देखें इतनी बड़ी इल्म की फजीलत, इतना बड़ा इल्म वालों का मकाम आपको इस आयत से पता चल रहा है कि अल्लाह ने उनका भी जिक्र फरमाया, उनकी तारीफ फरमाई है, तो क्या आप नहीं बनना चाहते इल्म वाले? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अल्लाह ताला ने किस चीज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि इसकी में इजाफा मेरे से मांगो, अगर इल्म से बढ़ के कोई चीज होती इस दुनिया में बड़ी नेमत तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आया नबी आप वो मांगे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुल रब्बी ज़िदर इल्म, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून, आप कह दें लोगों को कि इल्म वाला और बे इल्म बराबर नहीं होते, अल्लाह की नजर में दोनों में बड़ा फर्क है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला जिस शख्स के लिए के साथ खैर का इरादा करता है उसको दीन की समझ दे देता है, ना इल्म वालों का तो दर्जा है, और फरमाया सूरह फातिर में अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं, तो इल्म कैसे लें फिर, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यहया बिन कसीर फरमाते हैं इल्म जिस्म की राहत के साथ हासिल नहीं किया जा सकता, समझ आई, इल्म जो है ला यस्ततुल इल्म बिराहतिल जसद, ला यस्तताउ यानी नहीं इंसान पा सकता हासिल कर सकता इल्म बिराहतिल जसद, जसद ये जिस्म की राहत के साथ, कि आप लेटे हुए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि बस मैं क्लास ले लूं, आप इधर चैटिंग भी कर रहे हैं और साथ आपकी क्लास भी चल रही है, आपकी टेक्स्टिंग भी हो रही है और क्लास भी हो रही है, कोई तवज्जो नहीं है, ये इल्म के अदब के खिलाफ है, इल्म के भी कुछ आदाब होते हैं, अदब नहीं है अगर इल्म लेने का ना तो इल्म नहीं आएगा, साथ साथ बातें भी कर रही हैं घर में, बच्चों के साथ भी बातें हो रही हैं, घर वालों के साथ भी बातें हो रही हैं, साथ मेरी क्लास भी चलती जा रही है, मैं बड़ा इल्म ले रही हूँ, शायद आप कोई लिसनर तो हो सकते हैं फिर कि छोटी बड़ी थोड़ी बहुत कोई अच्छी बात आपके कानों में पड़ जाए, इल्म वाले नहीं कभी बन सकेंगे, इल्म वाले बनने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक इल्म के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है, सीरियस होना पड़ता है। नंबर टू, इल्म थोड़ा थोड़ा करके आता है, ये ऐसे ओवरनाइट नहीं आ जाएगा कि आप कहेंगे हाँ आज मैंने रात को क्लास लेके सोई हूँ या पढ़ के सोई हूँ तो सुबह मैं आलमे दीन बन के उठ जाऊं। नहीं, ये थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके आएगा और फिर आपको एक दिन पता चलेगा कि हाँ मुझे कुछ आ रहा है। अभी आपको महसूस नहीं होगा लेकिन आपके अंदर आता जाएगा आता जाएगा, और एक दिन आप कुछ कहीं बैठेंगे, आप कुछ बोलने के काबिल होंगे तो आपको होगा मैंने कहाँ से ये सीखा, वो आपको याद भी नहीं है वो कब आपके अंदर आता गया। तो इल्म वाले बनने की ख्वाहिश किया करें, ठीक है? ये छोड़ दें चीजें, अब जो लोग तो माशाल्लाह दूसरी तीसरी दफा कर रहे हैं, अब ये छोड़ दें ये सर्टिफिकेट, ये फलां, ये कब खत्म होगा, ये क्या, नहीं ये छोड़ दें, या बस एक एक दफा पढ़ लिया बस हमारे लिए काफी होगी। नहीं, उसकी डेप्थ में जाए ना, आपको एक डायरेक्शन दे दी जाती है कि इस इन लाइंस पे आप सोचें, अब आगे उसके अंदर तदब्बुर करना आपका काम है ना, उसके बाद उन आयतों को खोलें। जैसे अब मैंने कहा ये कंपैरिजन करें, अब आधे लोगों को तो याद भी नहीं रहना कि उसके बाद क्लास में कहा क्या गया था, लेकिन जिनको इल्म हासिल करने का शौक होता है ना, जो समझते हैं कि वाकई इल्म एक खजाना है, इल्म अंबिया की विरासत है, मैंने नबियों की विरासत लेनी है, मुझे इसका शौक लग गया, वो फिर चैन से नहीं बैठते, वो ये किताब खोलेंगे, एक उसको कंगालेंगे, उसको कंगालेंगे। हम ऐसे अक्सर के घरों में तो कोई दीनी कुतुब भी नहीं होती, कोई तफसीरी नहीं होती, देखेंगे किसको, कंसल्ट किसको करेंगे। तो ये शौक अपने अंदर, जैसे कपड़ों के शौक होते हैं, हम अपने मुल्कों में जाते हैं कब बाजारों में चल पड़ते हैं कपड़ों के लिए, इससे ज्यादा शौक होना चाहिए किताबों का, किताब लूं कोई अच्छी, उसको पढ़ूं। तो इल्म ऐसे ही नहीं आ जाता, ठीक है? इल्म के लिए ये मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लास्ट टाइम किसी ने सवाल किया था कि कैसे ये इल्म हासिल करें हम ज्यादा। कायम बिल किस्त, कायम रखने वाला है किस्त को, यानी कायम रखने वाला है, वो ये भी गवाही देते हैं, वो शाहिद अल्लाह अल्लाह गवाही देता है और ये मलाइका और उल इल्म गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, और क्या गवाही देते हैं, और ये कि वो अदल को कायम रखने वाला है। क्या मतलब अदल को कायम रखने वाला है? मतलब है कि उसकी जो सारे अहकामात है वो अदल पे मबनी है, उसके सारे फैसले अदल पे मबनी है, उसकी शरीयत अदल पे मबनी है, उसने जितने हुक्म दिए हैं, जितने तकदीर के फैसले, सब अदल पे हैं, इंसाफ है, इंसाफ है उनके अंदर, उसने ये जो कायनात का निजाम बनाया ना इंसाफ के साथ बनाया है। हम आजकल, अल्लाह माफ करे हम सबको, कि वो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि एक सर्वे हुआ था जिसमें पूछा गया था मुस्लिम कंट्रीज में कि आपको शरीयत चाहिए, कि आपकी शरीयत नाफिज कर दी जाए, तो अफसोस से कहना पड़ता है कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि 100% तो छोड़ें, कहीं 90% 70% भी कोई लोग हों जिन्होंने कहा हाँ हमें शरीयत चाहिए, और ये कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह को इलाह मानने में ये भी है कि उसके हर हुक्म को, उसकी हर फैसले को, उसकी शरीयत को दिल से माना जाए और ये समझा जाए कि ये इंसाफ है, यही इंसाफ है, यही हक है। ये नहीं कि हमारे दिलों में तंगी हो के हाय शरीयत ना कहीं आ जाए, अरे उससे हम इतना डरते हैं कि शरीयत आ गई ना कि जैसे हमारे ही हाथ कट जाने। भाई गलत कोई करेगा तो उसका हाथ भी कटेगा, चोर का, जो जिना करेगा उसको कोड़े भी लगेंगे, ये कुछ सारे इस तरह के कारोबार नहीं चल सकेंगे वो जो हराम के चल रहे हैं। तो लेकिन हम ऐसे डरते हैं क्योंकि अपने अंदर चोर है ना हमारे, तो हमारे फन ना कहीं खत्म हो जाए शरीयत आ गई तो अफसोस है कि हमें अपने अल्लाह जिसको हमने इलाह माना उसके बनाए हुए कानून के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, और उसको भी हम पसंद नहीं करते, पर वैसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीहां जितनी मर्जी करा लो, कितनी मर्जी करा लो ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीहां, हमें अपना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ पढ़ के हम रख रहे हैं जी, हमने तो मर जाना है तो फिर उसके बाद हम तस्बीहां पढ़ पढ़ के अभी से रख रहे हैं। कई लोगों को ये भी कहते सुना, सोचो कि वो रब, ये उलिल इल्म और मलाइका ये गवाही देते हैं कि वो रब कायम है किस्त पे, उसके हर फैसले में इंसाफ है, क्यों सोचते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ बेइंसाफी कर देगा? उसने ऐसा कोई कानून बना दिया जिसमें तुम्हारे लिए कोई अदल नहीं है, कोई इंसाफ नहीं, लोगों के कानून में इंसाफ है वो तुम्हें गवारा है, अल्लाह के कानून में इंसाफ नहीं समझते। सवाल करें अपने आप से। हम में से सब जो तंग बैठे हुए हैं, उन वो ना शरीयत समझे, जो कोई लोग शरीयत का नाम दे के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और गलत काम करते हैं, वो बात नहीं है। शरीयत अल्लाह का कानून है। कितने लोग हैं जो इसको तहे दिल से कहते हैं कि हाँ हमें कबूल है ये, हम इसे डरते नहीं है, हमें तो खुशी से है, हम तो चाहते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज में ही शरीयत नहीं है, और कहीं क्या होनी। तो देखें अल्लाह ताला की शरीयत, वो भी उसमें भी इंसाफ है, उसके जो फैसले हैं मेरे लिए, जो तकदीर के उसने फैसले किए हैं, वो उसमें भी इंसाफ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ना अल्लाह ने मेरे लिए ये कैसा फैसला कर दिया, ये क्यों कर दिया, मेरी तकदीर में ऐसे क्यों लिख दिया, नहीं। वो कायम बिल किस्त है। दूसरा, ये बैलेंस को भी किस्त कहते हैं। उसने बैलेंस रखा है हर चीज में, उसने बैलेंस रखा है इस कायनात में, अदल से चीज चल रही है। इसीलिए आप देखें ना इस कायनात में कितनी हारमनी है, इंसाफ है उसके पास, वो इंसाफ पे कायम है, और ये गवाही ये सब देते हैं कि वो इंसाफ पे कायम है। वो खुद भी अदल करता है और हमसे भी एक्सपेक्ट करता है कि हम भी अदल करें अपनी जिंदगियों में, इंसाफ करें। लेकिन आज देखिए मुसलमान ही जो कहते हैं, जो कहे उलुल इल्म कहते हैं मुसलमान, तो पता नहीं कौन से कहते होंगे या नहीं कहते होंगे कि अल्लाह ताला कायम बिल किस्त है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगियों में कितना इंसाफ है। हम अपने घरों में कितना इंसाफ करते हैं, हम अपनी सोसाइटीज में कितना इंसाफ करते हैं, हमारे खानदानों में कितना इंसाफ हो रहा है। छीना झपटी हकदार का, लेकिन इंसाफ का उलट क्या है, जुल्म। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता। अगर जुल्म किसी काफिर पे भी किया जाए, वो भी अगर मजलूम है, उसकी भी आह को अल्लाह ताला सुनता है। अल्लाह के और उसके दरमियान पर्दा नहीं है, चाहे काफिर मजलूम हो। हम ये नहीं समझ सकते कि काफिरों पे जुल्म करना वो ठीक है, क्योंकि ये काफिर जो है इसके ऊपर जुल्म करो अच्छी तरह, इससे छीना झपटी करो, नहीं। अल्लाह ताला कायम बिल किस्त है पूरी, यानी हर एक के साथ आपने इंसाफ, चाहे वो मुशरिक है, काफिर है, कोई भी है, उसके साथ इंसाफ। मगर हम तो अपने घरों में भी इंसाफ नहीं कर सकते, अपनी औलादों में इंसाफ नहीं करते, विरासत को तकसीम करने में इंसाफ नहीं है, उसमें भी अपनी मर्जियां चलाना चाहते, कहीं इंसाफ नहीं नजर आता। जब सोसाइटी के अंदर तबकात बन जाते हैं, इंसाफ नहीं है। हमारे तो क्या महमूद और याज एक ही सफ में खड़े हो गए, हमारे तो क्या है कि हज के अंदर आप जाते हैं देखिए कैसे एक ही लिबास के अंदर सब है, कोई बादशाह है या कोई फकीर है, एक ही सफ में खड़े हैं, ये है इंसाफ। लेकिन हमने क्या किया, काले गोरे की डिस्क्रिमिनेशन, बरादरियों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, जुबानों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, ये सब क्या, ये इंसाफ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आखिरी खुतबे में अपने फरमा दिए, किसी अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, किसी काले को गोरे पे और गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं हासिल, कोई फकीयत नहीं है, ये है इंसाफ। जबी तो बिलाल हबशी आ गए थे इस्लाम के अंदर, कि ये इंसाफ था इस दीन में, और उस माशरे में इंसाफ नहीं था। लेकिन हम तो उसी जगह पे बैठे हुए जो जाहलियत के माशरे थे, आज भी वही जाहलियत चल रही है। इंसाफ नहीं है, सास बहू के ऊपर जुल्म कर रही है, बहू सास के ऊपर कहीं जुल्म कर रही है, कहीं औलाद माँ बाप के साथ जुल्म कर रही है, कहीं इंसाफ नहीं नजर आता, कहीं माँ बाप अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ नहीं करते। तो अल्लाह कायम बिल किस्त है, वो इंसाफ करने वाला है, इंसाफ के साथ खड़ा होने वाला है। इसलिए कभी ना ये सोचें कि अल्लाह का कोई फैसला बेइंसाफी पे होगा। आपको शायद कोई लग रहा हो इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ फलाने के साथ, ये तो बड़ा जुल्म हुआ। अल्लाह माफ करे कि हम मुंह से ऐसी बातें कैसे निकाल सकते हैं कि हमारा रब तो कायम बिल किस्त है, हम कैसे कह सकते हैं कि उसने जुल्म कर दिया। कोई अंधे को देख लेंगे, हाँ इसके साथ तो बड़ा जुल्म है, अल्लाह ने उसको नहीं दी तो, उसको बिनाई नहीं दी तो अल्लाह का फैसला है, आप कैसे कह सकते हैं इसमें जुल्म। इंसान इंसानों पे जुल्म करते हैं, अल्लाह नहीं किसी पे जुल्म करता। मगर हाँ, ये आप और मेरे जैसे इंसान हैं जो जरूर, जिन्होंने जुल्म किया हुआ आज दुनिया में, तो इसलिए यह हाल है, इसलिए आज दुनिया में इतनी बेसकूनी, बेचैनी, और ये अजाब जो हम देख रहे हैं, ये हमारी अपनी बेइंसाफियां हैं जिनकी वजह से हम जुल्म करते हैं, अल्लाह नहीं जुल्म करता। ये आयत इस चीज की दलील है। और ला इलाहा इल्ला, नहीं कोई इलाह मगर वही अल अजीज, जबरदस्त है, गलबे वाला है, अथॉरिटी वाला है, उसकी अथॉरिटी अल्टीमेट है, उसका इख्तियार वो है कि कोई उसको पूछ नहीं सकता अल्लाह तूने ऐसे क्यों किया। वो इतनी बड़ी अथॉरिटी रखता है, इतनी बड़ी पावर, इख्तियार उसके हाथ में है। इख्तियार समझते हैं ना आप, और अल हकीम और हिकमत वाला है। ऐसा नहीं कि अपने इख्तियार को अलल टप इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी साथ जुल्म कर रहा हो, किसी नहीं, हिकमत है। इन दीन अंद अल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। इसको हाईलाइट कर लें खुदा के लिए। वो लोग जो कहते हैं सारे ठीक हैं, नहीं आप क्यों किसी को कहते हैं कि वो भी गलत है, नहीं अगर आप मुसलमान हैं तो क्या आप ही ठीक हैं? देखिए ना, किसी को ना कहें, वो हिंदू जो है वो भी असल में तो अल्लाह की इबादत करते हैं ना, देखें, और वो जो ईसाई है वो भी। ऐसी बातें मैं लोगों से सुनती सोचती हूँ, इन्होंने कभी पढ़ा भी है कि कुरान में है क्या? अल्लाह के नजदीक सिर्फ दीन है तो इस्लाम है, इस्लाम के बाद कोई और दीन अल्लाह के हाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अब मैं कैसे कह सकती हूँ, ये कैसे कह सकती हूँ? अब आप मुझसे पूछे कि भैया ये आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं? वो भी तो नेक काम करते हैं, वो भी तो नेकियां इतनी कर रहे हैं, वो भी तो ऐसे करते हैं, वो तो फलां करते हैं, वो तो हमसे ज्यादा अच्छे, अल्लाह माफ करे, वो तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, वो चाहे शिर्क करते हैं लेकिन अच्छे बहुत हैं वो। नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वह मई यब तगी गैर अल इस्लामी दीनन, इसी सूरत के अंदर आप पढ़ेंगे आले इमरान में, जो कोई भी अल्लाह के पास इस्लाम के अलावा कोई दीन लेकर आया, फलई युकबला मिनहु, तो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखरत मिन अल खासिरीन, और वो आखरत में खसारा पाने वाला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जो यहूदी या नसरानी मुझ पर ईमान लाए बगैर फौत हो गया वो जहन्नमी है। बाकियों का तो नाम ही नहीं लिया, लगे उनका तो वैसे ही बेड़ा गरक है, क्योंकि वो तो वैसे ही बुतों को पूजते हैं, या वो यही सिर्फ दो अध्ययन ऐसे हैं ना जो अल्लाह के ऊपर भी ईमान रखते हैं, जो किताब वाले हैं। ये भी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर फौत हो गए तो जहन्नमी है। इससे पता चलता है कि आज ये अकीदा रख लेना कि अल्लाह एक है और उसके बाद कुछ अच्छे अमल कर लिए, ये इस्लाम नहीं है। इससे नहीं निजात मिलेगी आखरत में। इस्लाम क्या है? इस्लाम वो दीन है जिसकी दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। इस्लाम की दावत हर पैगंबर ने दी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके वो कंप्लीट हो गई, जिसमें तौहीद है, जिसमें रिसालत है, जिसमें आखरत पे ईमान है, जिसमें तमाम अंबिया को मानना है। तो अब ये नहीं चल सकता कि आप कहें कि बस एक अल्लाह को तो हम मानते हैं, जैसे कुछ आजकल लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि हम एक अल्लाह को मानते हैं बस, उसके बाद हमें और कुछ नहीं, और उससे आगे नहीं हमें कुछ कहोगे, प्रॉफिट्स या ये चीजें फिर इंसान को डिवाइड करती हैं, तो हमें इस तरह नो, ये इस्लाम नहीं है, याद रखिए। एक अल्लाह को मान लेना सिर्फ काफी नहीं है, जब तक इस्लाम में ना दाखिल हो रहा जो, और इस्लाम ये सब चीजों को मानना है। इस्लाम का मतलब और क्या होता है? सबमिशन, सबमिट कर देना। और कौन सी सबमिशन? इताअत। कौन सी इताअत? अनकंडीशनल, गैर मशरूत इताअत। ये नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं इताअत करूंगी, अब मैं नाराज हूं, अब मैं मुझे कुछ मिला ही नहीं, मुझे क्या फायदा, छोड़ो सब चीजें, नहीं, अनकंडीशनल। कंडीशंस नहीं लगा सकते आप, शराइत नहीं बांध सकते। इस्लाम का माना है इताअत करना। नंबर टू, सलामती में दाखिल हो जाना, क्योंकि जब इंसान अल्लाह रसूल की इताअत करता है तो वो इस दुनिया में भी सलामती पाता है और आखिरत में भी अजाब से सलामती पाता है। पीस ऐसे ही तो नहीं कहते, इस्लाम मीन्स पीस, इस्लाम मीन्स सबमिशन। तब आप कहें इस्लाम का मतलब क्या, हमें तो कभी आप पीस कहते हैं कभी ये कहते हैं, ये दो मानने हैं इसके। तो अब समझ आ गई कि अल्लाह ताला के हाँ सिर्फ ये एक्सेप्टेबल है, इन अल्लाह इस्लाम, यानी सिर्फ ये आप दीन है। इसके बाद जब इस्लाम आ गया तो अब कोई और दीन एक्सेप्टेबल नहीं। वह मख्तलफ अल्लदीना उतुल किताबा, और नहीं इख्तलाफ किया उन लोगों ने जो किताब दिए गए, यानी किताब कौन दिए गए? यहूदो नसारा। उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया इल्ला मिन बादी मा जाअहुमुल इल्म, इस मगर इसके बाद के उनके पास इल्म आ गया। यानी यहूदो नसारा जो किताब वाले लोग हैं, इन्होंने आपस में इख्तलाफ किया अपने अंदर ही भी, हो सकता है कि ईसाइयों ने अपने दरमियान ही, यहूदियों ने अपने दरमियान ही, या एक दूसरे के साथ इख्तलाफ किया, यहूदियों ने ईसाइयों के साथ, तुम कुछ नहीं हो, आपने सूरह बकरा में पढ़ा, ईसाइयों ने कहा तुम कुछ नहीं हो, एक दूसरे से इख्तलाफ किया, या मुसलमानों से इख्तलाफ किया, तो इख्तलाफ की डिफरेंट नौइयत हो सकती है। लेकिन इन्होंने तब इख्तलाफ किया, अफसोस की बात है, ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं था, ऐसा नहीं कि ये जाहिल थे, बल्कि इल्ला मिन बादी मा जाअहुम इल्म, इसके बाद के उनके पास इल्म आ गया हुआ था, फिर क्यों इख्तलाफ किया? इल्म आ गया हुआ था तो फिर क्या पॉइंट बनता था इख्तलाफ का? फिर ये पॉइंट बनता था कि फरमाया बगयम बैनहुम, आपस में जिद की वजह से। यानी बग ही का मतलब क्या है कि कि एक दूसरे के ऊपर गलबा पाने की कोशिश, मुकाबलेबाजियां जिसको नहीं हम कहते, यानी आप वो कहेंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बात बताई कि अगर हमने इस रसूल को मान लिया अबू हारसाने का, तो फिर मान लिया तो फिर तो हमारी अपनी चौधराहट का क्या होगा, हमें कौन इज्जत देगा। इसी तरह की आपस में जिदबाजी कि फिर मैं इसके ऊपर गलबा पा लूं। देखिए जब ना दीन दुकान बन जाता है ना, दीन दुकान बन जाता है, वाकई मेरी दुकान चमके ज्यादा, मेरा बिजनेस ज्यादा चले, मेरे पास ज्यादा लोग आए, अब चारों नाचार वो क्या करेगा, दूसरे की बुराई करेगा, दूसरे के अंदर कोई ना कोई ऐब ढूंढेगा, क्योंकि जब ऐब ढूंढेगा तो लोग उसकी दुकान छोड़ के मेरी दुकान पे आ जाए, वो तो ऐसा है वो तो है। इस बेसिस के ऊपर फिर के इख्तलाफात, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, ये सब होता है, समझ आई? तो यानी लोगों ने, ये नहीं था कि उनके पास इल्म नहीं था, इन लोगों ने इख्तलाफ इसलिए किया क्योंकि ये अपनी अपनी जिद, अपने आप को ऊपर करना चाहते थे, अपने आप को गालिब करना चाहते थे, अपना सिक्का मनवाना चाहते थे, अपनी चौधराहट रखना चाहते थे, ये था मसला। इसकी वजह से आपस में भी इन्होंने एक दूसरे को कहा, आपस में भी इख्तलाफात किए, हसद, बुग्ज, इनाद, हक को जानने के बावजूद बस ऐसे अपने मफाद के चक्कर में गलत बात पे जमे रहते थे, हमने नहीं छोड़नी, ताकि उनकी नाक ऊंची रहे, अवाम के अंदर उनके फैन ज्यादा रहे। और अफसोस है कि आज मुसलमान उलमा की भी एक बड़ी तादाद इसी रास्ते पे है। इसीलिए आप देखते हैं ना कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया इन इन दीना इंदल इस्लाम, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सबसे पहले तुम अपना फिरका बताओ कि तुम्हारा फिरका कौन सा है। सख्त नफरत है मुझे ये फिरका वारियत से। असहाबा में भी इख्तलाफात होते थे, वो भी एक दूसरे से डिफर करते थे ओपिनियन में, लेकिन वो फिरके नहीं बना के बैठ जाते थे कि कोई फारूकी है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने अपना फिरका बना लिया फारूकी। हाँ, या आप देख लें सॉरी, उमर फारूक ने अपना फिरका बना लिया फारूकी, अबू बकर सिद्दीक ने अपना फिरका बना लिया सिद्दीकी, किसी और ने किसी और फिरका बना लिया, अपने अपने नाम दे के अपने फिरके और आपस के अंदर लड़ाइयां शुरू कर दी, ऐसा कुछ आपने देखा सहाबा में? लेकिन हमारे यहाँ देखें ये कितना प्रॉब्लम है कि एक दूसरे को देख के भी राजी नहीं है, एक दूसरे से इतनी नफरतें हैं, और अपने हार उनके दर्स के अंदर बस उन्होंने इसी चीज को हाईलाइट करना होता है, ये फलाना देखें वो कैसे करते हैं, फलान देखें वो कैसे करते हैं। वो आप सही दीन तो पहुंचाओ, सही दीन पहुंचाने की नहीं फिक्र है, ज्यादा उन ऐसे मदारिस के अंदर नफरतें भी पैदा की जाती हैं दूसरे फिरकों से, और फिर उसके बाद क्या होता है, यही झगड़े फसाद, असल चीज को छोड़ा हुआ है हमने, क्या दूसरों को जाके तबलीग करनी है, हम तो अपने अंदर के ही मसले नहीं हल कर सकते, और क्या इनको पास इल्म नहीं है? इल्म है, जहालत की वजह से तो नहीं ऐसे कर रहे, बस ये फिर अब हम फिर यानी जिसको मुमताज को क्या इंग्लिश में कहेंगे कि हम किस तरह फिर प्रोमिनेंट होंगे अगर हम दूसरे को नहीं लेट डाउन करें कि ना, अब मैं कहूँ सारे ही अच्छे हैं तो फिर मेरी क्या रह जाएगी, मैं जब कहूंगी ना वो तो उनके अंदर ये मसले हैं, वो तो इतने बुरे हैं, तभी आप कहेंगे हाँ वाकई उधर नहीं जाना, इधर ही रहो, समझ आए? ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जो इस उम्मत में भी हुआ है। अच्छा एक बात और मैं कहना भूल गई, बताना भूल गई आपको कि दीन का क्या मतलब होता है। दीन मजहब ठीक है, लेकिन दीन का मतलब है वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। अल्लाह के नजदीक वे ऑफ लाइफ इज ओनली इस्लाम। आपको पता है ये भी सवाल हमसे कब्र में होना है, कब्र में जो तीन सवालात होने हैं ना, उसमें एक हमारे लिए ये भी सवाल है, तुम्हारा दीन क्या है, यानी तुम्हारा वे ऑफ लाइफ क्या था, उसमें ये रटा हुआ क्वेश्चन यहां से नहीं याद करके जा सकते कि मेरा दीन इस्लाम है, वो ही बोल सकेगा जिसने वाकई इस्लाम को अपना दीन बनाया, अपना वे ऑफ लाइफ बनाया, अपना उठना बैठना, खाना पीना, अपनी इकोनॉमी, अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके, अपने ट्रांजेक्शंस, अपनी डीलिंग्स, चाहे माल की है चाहे लोगों के साथ वैसे हैं, हर तरह की चीज को इस्लाम के ताबे किया कि मेरी जो डीलिंग होंगी वो जो मेरी पसंद नापसंद की बेस पे नहीं है, बल्कि वो मैं अल्लाह से पूछूंगी कि कैसी होनी चाहिए। जिसको अल्लाह एक्सेप्ट करता है वो है दीन, ठीक है? तो हमारी जिंदगी के मामलात में कितने मामलात ऐसे कि वो वाकई अल्लाह को भी एक्सेप्टेबल होंगे, रहना सहना खाना पीना पहनना ओढ़ना शादी ब्याह ये सब चीजें कितने मामलात हैं, क्योंकि दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम ही है, वे ऑफ लाइफ इज ओनली इस्लाम। बहुत लोग तो इससे सेटिस्फाइड भी नहीं है कि वे ऑफ लाइफ इस्लाम हो हमारा, वो तो इससे उनको बहुत मतलब एलर्जी सी होती है और दम घुटने लगता है, क्या ये वे ऑफ लाइफ बस इस्लाम हो, हमारा तो वे ऑफ लाइफ वेस्टर्न होना चाहिए। वेस्टर्न से मतलब ये नहीं कि वेस्ट में सारे को बुराई ही है, मगर वेस्टर्न से मतलब ये है कि जो लोग आपे से बाहर निकले हैं उनका वाला वे ऑफ लाइफ हमें पसंद है, ये तो हमें रिस्ट्रिक्टेड लगता है। तो फिर खुद सोच लें कि हमारा क्या हाल है, तो क्या कब्र में हम जवाब देंगे उसके बाद, अगर हमें ये पसंद ही नहीं है अपनाएंगे क्या उसको, पहले तो पसंदीदगी आए, पहले तो एक्सेप्ट तो करें, एक्सेप्टेंस दिल में अगर नहीं है तो फिर कैसे उस वे ऑफ लाइफ को अपनाएंगे। ये अब हम इसमें नहीं सोचें कि अब हुकूमती लेवल पे ये होगा तो फिर इंडिविजुअल्स आप मैं हमारे घरों के अंदर हमारे मामलात के अंदर हमें इंसाफ पे कायम रहने से कौन रोक रहा है, कोई रोक रहा है आके हमें वे ऑफ लाइफ इस्लाम अडॉप्ट करने से कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा, मगर अंदर है ना मुश्किल, तो इसलिए हम बाहर पे डाल देते हैं, नहीं जब हुकूमत ऐसी होगी, जब ये होगा, जब इस्लाम का बोलबाला होगा, जब सारे लोग ये करने लगेंगे तब मैं भी कर लूंगी। नहीं, आपको आज भी कोई नहीं रोक रहा, आप अपने लेवल पे तो करें ना, हम अपने लेवल पे भी नहीं करते, हमें नहीं खिलाफत चाहिए टू डू ऑल दीज, हमें अपने लेवल पे अपने घरों के अंदर कौन सी खिलाफत चाहिए हमें ये करने के लिए, नहीं चाहिए। हाँ आ जाती है तो अच्छा है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहना कि तो कोई लाफत नहीं आई तो तुम बेचारे का क्या कसूर है, तो इस इंतजार में ना बैठे रहे। वमन यकफुर भी आयात अल्लाह फइन अल्लाह सरीउल हिसाब, और जो कोई कुफर करेगा अल्लाह की आयात के साथ तो अल्लाह बड़ा जल्द हिसाब लेने वाला है। पहले क्या आया था, शदीदुल आदाब शदीदुल एकाब पहले आया था ना इसी सूरत में, कि अल्लाह ताला फिर बड़ी सख्त सजा देने वाला है। अब आया अल्लाह बड़ा सख्त जल्दी हिसाब लेने वाला है, यानी फिर जल्दी हिसाब हो जाना, ये ना सोचना कि अभी बड़ी दूर है कयामत और फिर देखी जाएगी,